जगह बनाएगा, तो हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा सांस लेके फिर मैं कहूंगा उसके बाद मेरे पीछे दोहराइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो नमः,
जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रणाम करते हैं गदी के स्थान के ऊपर महाराज सुदर्शन आचार्य जी स्वामी महाराज के चरणों में, जिन्होंने आपको भगवान के साथ जोड़ा है। हमारे हितेश जी पूछते हैं कि दूसरे को बढ़ता हुआ सुखी होता हुआ देखें और उसको हम एंजॉय करें, ये कला ये आर्ट सीखने में अगर हमको आ जाए तो हम संसार में सुखी हो सकते हैं। दुनिया में दुखी इसलिए लोग नहीं है कि उनके पास है नहीं, दुनिया में लोग दुखी इसलिए कि दूसरे के पास ज्यादा क्यों है, लोग दुनिया में दुखी इसलिए कि दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। ईर्ष्या हसद साड एनवी, ये एक ऐसा दुर्गुण है जो हमको इस संसार में कभी भी भगवान के निकट नहीं जाने देता, भगवान के नजदीक जाने नहीं देता। और जिस दिन ये चीज हमारे हृदय से निकल गई उस दिन हमको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप हमारे पास चले आएंगे। अनुसूया, अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? अनुसूया। अनुसूया का मतलब है जो किसी से ईर्ष्या न करे, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करे उसका नाम होता है अनुसूया। और अनुसूया को कहीं भगवान राम को लेने जाना नहीं पड़ा था, भगवान राम सीता और लक्ष्मण उनके घर में अपने आप चल के आए थे, उनको बुलाना नहीं पड़ा था भगवान को, भगवान अपने आप चले आए थे। जिस दिन हमारे हृदय में ईर्ष्या रूपी जो ये डायन बैठी हुई है, जो हमको दूसरे को सुखी देखने नहीं देती है, इसको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। और मन में भाव कैसा, आपका अपना बेटा अगर बहुत ज्यादा आपसे बढ़ जाए तो आप कुछ होते हो कि नहीं होते हो? आपका बेटा आपसे ज्यादा प्रोफेशन में आगे बढ़ जाए, ज्यादा पढ़ जाए तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती? वहां ईर्ष्या क्यों नहीं होती है? अपना विशेष रूप से जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारा अपना जिसको हम मान लेते हैं, वो अगर आगे बढ़ जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, उसके आगे बढ़ने से हमारे को कष्ट नहीं होता है। लेकिन कॉम्पिटेटिव मूड जहां होता है वो अगर हमसे आगे बढ़ता है तो हमें बहुत बड़ी पीड़ा होने लगती है। लोग कितनी ईर्ष्या करते हैं, एक आपने कथा सुनी हो, भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत शंकर को प्रसन्न किया, भोलेनाथ रा प्रकट होके बोला क्या चाहिए? बोला मैं जब आपको बुलाऊं जो मुझे चाहिए वो आप दे देना। बोला ठीक है, आप ये शंख देता हूं बजाना, मेरे गण आ जाएंगे, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुमको जितना मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब ये टेस्ट कर रहे हैं भोलेनाथ कि इसका हाल क्या है। देखें, ये खुश हो गया, घर गया, शंख बजाया, भोले का गण आ गया, बोला मेरा एक बहुत अच्छा बंगला बनना चाहिए। बंगला तो इसका बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास बन गया, 5 स्टार, लेकिन पड़ोसी के 2 बन गए। बाहर निकल के देखा, तपस्या मैंने की, काम मैंने किया, बंगले 2 इसके, मेरा 1। बोला दूध के लिए बहुत अच्छी एक गाय चाहिए, तो 1 गाय इसके घर में, 2 गाय उधर बंधी हुई है। बोला अच्छा, काम हम करूं खाए, अब देखो क्या करता हूं। शंख बजाया, बोला क्या चाहिए? बोला मेरी 1 आंख निकाल दो। तो पड़ोसों की दोनों निकाल दी। ये है, दूसरे को देख के सुखी नहीं हुआ, अब उसको दुखी देख के अपनी 1 गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की तो 2 गई ना। ये जो चीज है कि मुझे नुकसान हो तो भले दो, लेकिन दूसरे को तो कभी उसमें चढ़ने नहीं दूंगा, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। सेल्फिश हर एक आदमी है इस दुनिया में, एवरीबॉडी इज सेल्फिश। हम प्रेम तो स्वयं अपने से करते हैं और किसी से नहीं करते, सच्ची बात तो ये है, ये नेचुरल है। अकबर ने एक बार पूछा था बीरबल से कि हम प्रेम सबसे ज्यादा प्रेम आदमी किससे करता है? बीरबल ने कहा अपने आप से। बोला नहीं, अपने कैसे आप से करता है? लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बोला ठीक है, ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अपने आप से लोग प्रेम ज्यादा करते हैं। बोला इसको प्रूव करो, प्रूव इट। बोला ठीक है महाराज। वो गया कहीं मदारी से एक बंदरिया लाया और उसका बच्चा लाया। बोला महाराज अब देखो कौन किससे प्रेम करता है, क्या करोगे? बोला खड्डा खोदो। बड़ा खड्डा खोदा, बंदरिया उसमें डाली, बच्चे को उसमें डाला। बोला आप क्या करोगे? बोला महाराज देखो इसमें पानी डालो। वो जग, 2 जग पानी डाला तो पानी आ गया इतना बंदरिया की, बंदरिया ने बच्चे को उठा के छाती से लगा लिया। महाराज बोला देखो बच्चे के लिए कितना प्रेम है। बोला महाराज सही है, अब देखो थोड़ा और आगे, 1 जग और पानी डाला, पानी यहां तक आया, बंदरिया ने बच्चे को सर के ऊपर रख दिया। बोला देखो कितना प्रेम करती। बोला हाँ सही है महाराज, 1 जग और डाला, पानी यहां तक आया, बच्चे को ऐसे खड़ा कर दिया। अब आखिरी जग डाला, पानी नाक से ऊपर गया तो बच्चे को लेके नीचे पांव के नीचे रखा और ऊपर खड़ी हो गई सांस लेने के लिए। बोला महाराज देखो किससे प्रेम करती है, जब तक पानी यहां तक नहीं आता है तब तक दुनिया के सबसे हमको प्यारा लगते लग रहा, अपने नाक के ऊपर जब जोर आता है तब कोई अच्छा नहीं लगता। तो हम अपने आप को प्रिजर्व रखना चाहते, क्यों रखना चाहते अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम हैं आत्मा जो कभी मरने वाले हैं नहीं, और हम हैं भगवान के, और भगवान से हम इतना प्रेम करते हैं कि हम अपने आप को न होना न होता हुआ देखना नहीं चाहते, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि हम भगवान से हमारा प्रेम बना रहे। असल में इसलिए हम अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम, और भगवान हमको और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। लेकिन उस वक्त भगवान भी क्या कहता है भगवद गीता में, ये शब्द 9वें अध्याय में भगवान को अर्जुन को कहते कृष्ण, इदम तुते गोहि आत्मम प्रवक्षामि अनुसूयवे। अर्जुन तुम्हें मैं इसलिए गीता का ज्ञान बता रहा हूं। कौन सा वाला ज्ञान? गुह्यत्मम। गुह्यत्मम का अर्थ क्या है? गुह्य कॉन्फिडेंशियल, गुप्त, रहस्यमय। गुह्य गुह्यतर, मोर कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गुड, बेटर, बेस्ट। इट्स लाइक गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। इदम तु ते, ते मीन्स ऑन टू यू, तुमको। गुह्यतम प्रवक्षामि, प्रवचन करके समझा रहा हूं। क्यों समझा रहे हो? अनुसूयवे, बिकॉज यू आर ए नॉन एनवियस। तुम्हें ये गीता का परम गुप्त ज्ञान, गोपनीय ज्ञान मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम नॉन एनवियस हो। तुम्हें ईर्ष्या नहीं है मुझसे, तुम ईर्ष्या नहीं करते हो। किसी को सुखी देख के तुम्हारे दिल में आग नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हारे को ये परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। इदम तुते गुह्यत्मम प्रवक्षामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान विज्ञान सहितम, क्या दे रहे हो? बोला जानकारी केवल नहीं दे रहा हूं, अनुभव भी दे रहा हूं। विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन, साइंटिस्ट। जैसे ज्ञान का मतलब है नॉलेज और विज्ञान का मतलब है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब आपका अपना अनुभव। तो मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं आपको। इस दुनिया में लोग क्या करते हैं? अपने से छोटे को दबा के रखते हैं, बराबर वाले से कंपटीशन करते हैं और बड़े का, बड़े को नीचे गिराने का पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे ये नीचे गिरे। दुनिया का ये नियम है। और एक बार जो आध्यात्मिक जीवन में आएगा उसकी जीवन की क्या शैली होगी? अपने से छोटे के ऊपर दया करेगा, बराबर वाले से प्रेम करेगा और बड़े की सेवा करेगा। ये जिंदगी में सुख, अगर आपको सुखी रहना है तो अपने से छोटों के ऊपर दया दिल में रखो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अभाव किस चीज का है? ग्रेटेस्ट स्कर्सिटी इन दिस वर्ल्ड इज कंपैशन। दया लोगों के दिल से निकल चुकी है। रोड के ऊपर आदमी तड़पता हुआ मरता हुआ देख के 100 गाड़ियां उसके सामने से गुजर जाएंगी, कोई रोकेगा नहीं। लोगों के हृदय में से दया नाम की चीज रही नहीं। अपने से छोटों के ऊपर दया, जिस दिन हमारे करने में विचार आ गया, बराबर वालों से प्रेम और मैत्री, मित्रता और प्रेम, कंपटीशन नहीं, गिराने का प्रयास नहीं, ईर्ष्या नहीं, मैत्री और प्रेम, नो कंपटीशन, कोऑपरेशन। और अपने से बड़े जो सुखी ज्यादा हैं उनका आदर। पड़ोस में कोई सुखी है, रिश्तेदार कोई सुखी है तो दुखी समक्ष हमें काम आ जाएगा किसी मुश्किल के समय में। उसकी सेवा करेंगे तो और हमको उससे लाभ मिलेगा। जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा महामंत्र है कि अपने से नीचों के ऊपर दया करके ऊपर उठाओ, बराबर वालों से मैत्री और प्रेम करो, बड़ों की सेवा करो और उनके उनके अनुभव से, उनके रियलाइजेशन से अपने जीवन में कुछ सीखो। जब आप सेवा करोगे तो निश्चित रूप से वो आपकी सहायता करेंगे। इदम तु ते गुह्यत्मम प्रवक्षामि अनुसूयवे। तुम ईर्ष्यालु नहीं हो। एक बार पांडव जब 12 साल के लिए वनवास में गए थे तो वो काम्य वन में रहे हुए थे। काम्य वन दिल्ली से हस्तिनापुर और दिल्ली से काम्य वन 101 किलोमीटर है, वृंदावन के पास में है काम्य वन। उस वक्त दुर्वासा, उस वक्त आप ये दुर्योधन ने यह विचार किया कि पांडव वनवास में हैं, अब तो फल फूल खाते होंगे, अब राजा के राजभोग तो मिलेंगे नहीं, अब अपन कैसे करते हैं, एक कैंप उनके पास लगाएंगे और बहुत सुंदर ऐसा फ्राई माल करेंगे कि उसकी खुशबू जो है, जो उसकी सुगंध है, भीम के नाक में जाएगी ना, तो उसके पेट में बड़े बल पड़ेंगे, वो खाने का बड़ा शौकीन है, चलो एक उनको दुख पहुंचाते। अब एक पहले दुखी हैं, घर से गए हैं, वन में चले गए हैं, राजा होते हुए वनवासी बने हैं, और उनको चलो वहां भी सुखी नहीं रहने देंगे। ये है दुर्योधन की वृत्ति, इसको बोलते हैं असुरी वृत्ति, डिमॉनिक नेचर। गए उधर कर्ण, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, ये चंडालों की चौकड़ी, ये चार पूरे हैं। बहुत बड़ा उन्होंने वहां अपना उत्सव मनाया, मेला मनाया खाने के लिए। ये आपने कभी वृंदावन गए हैं? आप कभी बांके बिहारी गए? बांके बिहारी गली जाते हैं ना, तो वहां वो बे आलू की टिक्की वाला बैठता है, तो बोलते हैं भल्ला। और जब आप वहां से गुजरेंगे ना, तो थोड़ा घी मार के ऐसे छू करेगा, छू करेगा, वो खुशबू आपके नाक में आएगी, तो बांके बिहारी भूल जाएगा, आप भल्ला खाने चले जाओगे। अपने कभी उसको आप नोट कीजिए, जब आप वहां से गुजरे वैसे कुछ चुप करेगा, आप जब जाएंगे ना, थोड़ा घी डाल के ऐसे छु 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 करेगा, तो भगवान बैठा है, कहीं जाता नहीं है, वो अंदर में पहुंचेगी ना, तो उधर आपको पकड़ के ऐसे खींच लेगा वो। ये उनकी स्पेशल वहां की ये कला है। वो अच्छा भल्ला बनाते हैं और लस्सी भी अच्छी बनाते हैं। अब तो वाकई भीम को तो गुस्सा आ रहा है कि देखो हम तो यहाँ खा रहे हैं कंदमूल और ये फल फूल, और ये हमारे यहाँ दुकान लगा के और हमको ही ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे नेचुरली एनवी होती है एक प्रकार की। इतने बीच में अचानक ऐसे हुआ कि चित्ररथ जो है उसने इनको बंदी बना लिया, दुर्योधन को बना लिया बंदी, और कर्ण उसकी रक्षा कर नहीं पाया। ये समाचार युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचा कि दुर्योधन हमारे पास में कैंप लगा हुआ था और उसको किसी ने बंदी बना लिया है। ये समाचार सुनते भीम ने कहा अच्छा किया, उसको बंदी बनना चाहिए, वो हमको यहां वनवास में भी सुख से नहीं रहना देना चाहता है। अर्जुन अभी तक चुप था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन जाओ उसको छुड़ाओ। अर्जुन देखने लगा क्या कहते हैं, जो हमको वन में भेजा, जिसने जो हमारी पत्नी का इतना अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया, उसको आप कहते हैं छुड़ाओ। तब युधिष्ठिर महाराज ने एक शब्द कहे, बोला सुनो मेरे भाइयों, अपने घर में हम पांच पांडव हैं, वो 100 कौरव हैं, हमारा आपसी घर का मामला है, लेकिन जब दुनिया के सामने है तो हम 105 हैं। जब दुनिया से हमारा व्यवहार कोई चलेगा तो हम 105 हैं, घर में तो हम आपस में निपट लेंगे, लेकिन इस वक्त किसी बाहर के लोगों ने उनको तकलीफ दिया है, इस वक्त हम उनकी सहायता करेंगे, उनका दुख हम देख नहीं सकते। अर्जुन अपने भाई की आज्ञा के ऊपर युधिष्ठिर के चला गया। चित्ररथ गंधर्व अर्जुन का मित्र था और शिष्य भी था, उसके साथ बहुत मित्रता के साथ रहा था। अर्जुन को देखते ही आप पार्थ इधर कैसे, बोला महाराज युधिष्ठिर ने कहा है ये हमारे भाई है, आपके भाई है तो ले जाओ। तब दुर्योधन ने अर्जुन को कहा था तुमने आज मेरी रक्षा की है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हस्तिनापुर का राज चाहिए तो दे दूंगा। अर्जुन ने कहा जब जरूरत पड़ेगी मांगूंगा, अभी तो हम अपने भाई जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। एक दिन महाभारत युद्ध में ऐसा दिन आया कि जाकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा आप तो अपने मन में पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका तो कुछ मार नहीं रहे, मेरी सेना को तो रोज मार रहे हैं पांडव, आपने तो आजकल कुछ नहीं किया। क्षत्रिय था भीष्म पितामह ने कहा मैं तो अपनी शक्ति से लड़ रहा हूं, फिर भी ये पांच बाण स्पेशल आज निकाल के रखता हूं, कल मैं युद्ध भूमि में इन बाणों के द्वारा पांडवों का वध करूंगा। अब दुर्योधन ने कहा मेरे को तो बाबा पितामह ये बाण मैं संभाल के रखता हूं, उसको ये था कहीं कोई लेने जाए ऐसे, क्योंकि पांडव आते हैं कभी लेके चले जाते हैं, पहले एक दो बार ऐसे हुआ है। अब कृष्ण भगवान दुर्योधन को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम सो रहे हो जागो ना। बोलो क्यों, मैं तो थका हूं सारा दिन लड़ाई किया है, तुम्हें चिंता नहीं है? बोला नहीं मैं आपका चिंतन करता हूं, आप चिंता करो, चिंता करना आपका काम है, इस दुनिया में जो भगवान का चिंतन करता है उसकी भगवान चिंता करते हैं, चिंता और चिंतन में केवल एक बिंदु का अंतर है, चिंता का मतलब है जो हमारे पास नहीं है हमको मिलेगा कैसे, और चिंतन का मतलब है जो भगवान हमने देखा नहीं है वो हमको कब मिलेगा। दोनों का एक काम एक है दोनों में, लेकिन एक चिंता करने से चित्ता के बराबर है, चिंता और चित्ता में भी कोई अंतर है नहीं है, वो अंदर से जलाती है चित्ता की तरह, लेकिन चिंतन भगवान से मिलाता है। तो अर्जुन कहता है आप चिंता करो, बोला चिंता मैं करूं, ठीक है तुम अब ऐसे करो जाओ दुर्योधन के पास। बोले दुर्योधन के पास अभी मैं क्यों जाऊं, बोले तुम्हें याद है एक बार उसने तुम्हें एक वचन दिया था कि जो मानना मांगना है वो मांग लो, बोला हाँ दिया तो था, बोला जाओ तुम, बोला मैं अभी क्या मांगने जाऊं, बोला उसके पास 5 बाण है वो लेके आ जाओ। भगवान का आदेश था, अर्जुन चला गया दुर्योधन के कैंप में। और ये पांडव कैसे लड़ते थे, दिन को तो एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ते थे लेकिन रात को साथ बैठ के भोजन करते थे, ये भी मर्यादाएं थी युद्ध की कि नेम अपनी जगह पे है, दुनियादारी अपनी जगह पे है, लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन दिन में रात को मिलते थे आपस में। तो कहा छोटा भाई है तो कैसे आया अर्जुन, बोला आपने एक बार मुझे कहा था कि कुछ मांगना है, बोला ठीक है मांगो तो हस्तिनापुर मांगो आज भी दे दूंगा, बोला नहीं वो तो अगर हमको लेनी होगा तो हम अपने बल से ले लेंगे, लेकिन इसने ये इस वक्त मैं मांगने के लिए आया हूं तुम्हारे पास जो 5 बाण है ये दे दो। और दुर्योधन ने सोचा नहीं, उसने उठा के बोला ये लो मैंने वचन किया था ना ये तुमको मैं दे देता हूं, और दे दी। अब ये दूसरे कितना दोनों, अब तीसरी बात सुनो, भीष्म पितामह सबको मारा जा रहा है, मारता जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज आके दुखी होके कहते हैं हे कृष्ण ये भीष्म पितामह जब तक जिंदा है तब तक ये हमारी सेना तो समाप्त होती जाती है, क्या करें। बोले जाके उससे पूछ के वो मरेगा कैसे, बोला ऐसे कैसे पूछो, मर जाओ पूछो। अब युधिष्ठिर महाराज गया भीष्म पिता के मार जाके प्रणाम किया, बोला विजयी भव। अब भीष्म पितामह को कहता युधिष्ठिर दादा मैं कैसे विजयी होऊंगा, आप बैठे हैं तो मैं विजयी कैसे हो सकता हूं, आपके होते हुए तो विजयी मैं नहीं हो सकता, आप सेनापति है और आप अपनी इच्छा से मरने वाले हैं, आपको मरने का इच्छा नहीं है अगर तो हम विजयी कैसे होंगे। भीष्म पितामह कहे मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूं, और फिर चुप हो गए बोला नहीं। युधिष्ठिर वापस आया, कृष्ण ने बोला मुंह लटकाया होगा, बोला क्या क्यों भाई पूछ के आए, बोला हाँ क्या, उसने बोला कि स्त्री को हाथ में नहीं उठाया, क्या द्रौपदी को ले जाके लड़ाई कराएं क्या, बोला तुमको मालूम नहीं है भीष्म पितामह ने तुमको अपना मरने का राज बता दिया, तुम्हें मालूम नहीं है शिखंडी एक अपनी सेना में है द्रुपद का बेटा, ये अगले जन्म में काशी के राजा की बेटी थी, ये 3 लड़कियां वहां से भीष्म पितामह लाया था, 2 तो अपने भाइयों को शादी करा दी थी, ये भीष्म से शादी करना चाहती थी, भीष्म ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं शादी नहीं करूंगा, इसने बड़ी तपस्या की थी कि भीष्म के मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, अब ये हिजड़ा बन के हो गया, ये मर्द नहीं है, ये मर्द के इसको कपड़े पहने हुए, तुम इसको खड़ा कर दो अर्जुन के रथ के ऊपर। अब अर्जुन के रथ के ऊपर आगे शिखंडी खड़ा है, पीछे अर्जुन खड़ा है, भीष्म ने शिखंडी को देखा अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया। अब अर्जुन को बोला पीछे से कृष्ण बोलते चलाओ बाण, और भीष्म उसको देख रहा है और बाण लग रहे हैं, शिखंडी चला रहा है, शिखंडी के बाण ऐसे ला रहे लग रहे हैं उनको जैसे मक्खी आ रही है उसको ऐसे उड़ा रहे हैं, लेकिन अर्जुन का बाण जा रहा है कवच को फेंद के अंदर। तो मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह कहता है द्रोणाचार्य को कि आचार्य तेरे शिष्य के बाणों में शक्ति है कि मेरे कवच को भेद रहा है, ये शिखंडी के बाण नहीं है, जो मेरे मेरे लहूलान मुझे कर रहे हैं ये अर्जुन के पीछे बाण है। तो ऐसे लोग भी थे जो दूसरे की विजय के लिए अपने जान को देते हुए खुश होते थे, वो तब हो सकते थे जब उनमें कुछ मॉरलिटी होती थी, कुछ मोर करेक्टर होता था, जब करेक्टर आदमी में होगा ना, पुराने जमाने में कहते हैं वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, धन गया तो कोई बात नहीं दोबारा कमा लेंगे, हाथ का मेल है आता है जाता है इसमें क्या है, हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, शरीर में कुछ त्रुटि हो गई अंग चला गया तो करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, लेकिन इस वक्त इस पृथ्वी के ऊपर से चरित्र कपूर की तरह उड़ता जा रहा है। The morality is evaporating from the planet Earth like ether. लोगों हमारे पास वैल्यू नहीं रह गई, बाप बेटे के अंदर कोई भाव और वैल्यू नहीं रह गई, सारी चीजें प्रोफेशनली ऐसे कॉम्पिटेटिव हो गई हैं कि हमारे अंदर में प्रेम के भाव रह नहीं गए। एक दूसरे के प्रति जो हमारे भाव होते हैं वो आस्ते आस्ते इमोरलिटी सब समाप्त होती जा रही है। इमोरलिटी के न होने के कारण हम दूसरे को, दूसरे के सुख को हम इंजॉय नहीं कर सकते हैं। और ये मॉरलिटी के लिए, जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे पानी पिलाओ, तो आपको कोई बर्तन चाहिए तब पानी पिलाओगे ना, गिलास में लाओगे कि लोटे में या कटोरे में, किसी में देना पड़ेगा ना। तो मॉरलिटी, मॉरलिटी कौन से कटोरे में बैठती है? व्हाट इज दी पात्रता, पात्रता मैंने व्हाट इज दी कंटेनर फॉर दी मॉरलिटी। आध्यात्मिकता चरित्र के लिए पात्र है। The container for morality is spirituality. आध्यात्मिकता ऐसा एक पात्र है जिसमें आपका चरित्र रह सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता इस विश्व के अंदर एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दुनिया में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया जाता हो। Unfortunately, there is no single university on the planet where the science of the soul is being taught. No, अध्यात्मिकता का अभाव है संसार में, और इसलिए अध्यात्मिकता नहीं है तो चरित्र हमारा उड़ता जा रहा है। इतना हम चरित्रहीन होते जा रहे हैं। कि जिन चीजों को हम खराब समझा करते थे किसी वक्त में हमारे बड़े बुजुर्ग, उन चीजों को अभी हमने नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा संभल रखा है। जिस चीजों को हमारे बड़े बुजुर्ग बुरा समझा करते थे उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये बुरा क्यों है, नहीं ये बुरा अच्छा है, हमने वैल्यूज ही अपनी बदल दी। देखिए आपके पास, सारी दुनिया के पास 24 घंटे ही है, लेकिन हमारे पास कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के टाइम नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए टाइम नहीं है। और हमको भी वैसे केवल संडे को ही यहाँ टाइम मिलता है गद्दी के ऊपर आने का, बाकी दिनों में हमारे को समय नहीं मिलता है। लेकिन समय हमारे पास 24 घंटे है, हर समय 24 घंटे को हमारे वैदिक ऋषियों ने 3 भाग में बांटा है। 8 घंटे शरीर के लिए है, जिसमें आप सो, स्नान करो, भोजन करो। लोग 8 घंटे के अंदर ही तो ये सब काम करते हैं प्रायः, कितना सोएगा आदमी 6-7 घंटे? कोई बिल्कुल ही कोई सुस्त होगा, लेजी होगा, तो 1-1.5 घंटा और सोएगा, और क्या करेगा, इससे ज्यादा तो नहीं सो सकता है। और भोजन करते ही वही 1.5 घंटे में खा लेगा जल्दी से जल्दी, और क्या करेगा, नहाएगा तो 15-20 मिनट में नहा के आ जाएगा। सब मिला के 8 घंटे में काम होगा, अगर ज्यादा ही लेजी है तो 1 घंटा और 9 घंटा कर दो। काम भी प्रैक्टिकली लोगों को 8 घंटे ही करने का है। गवर्नमेंट आज भी 8 घंटे काम लेती है, सबसे ड्यूटी पे जाने का टाइम सबका 8 घंटे। लेकिन ज्यादा जरा लोभ हमको अगर हो गया है तो 1 घंटा और बढ़ा दो, ज्यादा ज्यादा और क्या, लोभ है तो 1-2 घंटा हमने बढ़ा दिया है अपने काम को, फिर भी तो 6 घंटे बचते हैं, 9 और 9 18, तो भी 6-24 से बचते हैं। ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं जरा ढूंढो। इन 6 घंटों के ऊपर 3 चीजों का, इन 6 घंटों में 3 चीजें करनी चाहिए। पहली चीज सबसे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आध्यात्मिकता। आत्मा है तो ये शरीर है, और आत्मा का ज्ञान नहीं है, केवल शरीर का ही ज्ञान है। तो पिंजरे को सजाना है लेकिन तोते को मिर्ची भी नहीं खिला रहे हैं। शरीर तो बहुत चमकता हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर में आत्मा मुरझाई हुई है। तो इसका 2 घंटे हमारे को प्रतिदिन आत्मा के चिंतन के लिए, भगवत भजन के लिए, नाम स्मरण के लिए, कथा के लिए निकालना चाहिए। 2 घंटे आपके शरीर के लिए हैं, इसको स्वस्थ रखना है, इसको हेल्दी फिजिकली फिट रहने के लिए वॉक करनी है 1/2-1.5 घंटा, कुछ प्राणायाम करना, कुछ आसन करना, कुछ दौड़ भाग करनी है ताकि शरीर काम करे। और 2 घंटे तीसरा आपके सबसे ज्यादा अहम बच्चे हैं अपने, इनको टाइम क्वालिटी देना है 2 घंटे रोज का, बैठ के इनसे बात करनी है, इसका हाल अहवाल पूछना है, हो क्या गया है। इन 3 चीजों को इग्नोर कर दिया है पूरी दुनिया ने, स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर किया है, शांति से वंचित है, और दूसरे के सुख को देख नहीं सकते हैं, बहुत दुखी होते हैं। स्वस्थ संबंधी हेल्थ संबंधी हमने इस शरीर को बिल्कुल हमने शरीर का ध्यान नहीं देने शुरू किया है, छोड़ दिया है, इसलिए प्रायः सब लोग दवाओं के ऊपर जी रहे हैं, प्रायः सब लोग बीमार हैं, अस्पतालें रोज बढ़ती जा रही हैं और डॉक्टरों के बिल आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लेके जा रहे हैं। और बच्चों का ध्यान न देने के कारण फैमिलियां बहुत छिन्न भिन्न और टूटती होती जा रही है। हर माँ बाप कहता है बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, और बच्चा इस वक्त किसका कहना मानता है, खाएगा आपका, खर्चा आपका करेगा, लेकिन बात सिर्फ अपने फ्रेंड्स की मानेगा, या एक डब्बा है टीवी या नेट उसकी बात मानेगा, इंटरनेट की कथा सुनेगा या टीवी की कथा सुनेगा या फ्रेंड्स की, आपकी नहीं सुनेगा कभी भी। इस जनरेशन का नाम है नेक ब्रेक जनरेशन। नेक ब्रेक का मतलब ऐसे गर्दन सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर होगा, और इस नेक ब्रेक के साथ माँ बाप की भी नेक ब्रेक कर देता है खर्चा कर करके। ये जनरेशन और हमने ये 6 घंटे, और चौथी चीज हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट पैसा कमाना जरूरी है, शरीर को भी ठीक रखना है, परिवार को भी ठीक रखना है, तो पैसा कमाना चाहिए। हमारे माइंड में सिर्फ हमने एक पैसे कमाने को ही सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है। आएगा भाग का जितना आना है, दुकान दो दुकान एक जैसे है, वही चीजें रखी है सागी से, सब दुकान रेट भी सागी है, एक शाम जो 1,00,000 रुपया तो खड़ी थे, 10,000 तो खड़ी थे, तेजी मैंने खाए तो पांच भाग जो ना, मेहनत सभी करे मन तो बही मेहनत बही कन पे। तो ये पैसे कमाने के पीछे हम इतने पागल हो गए हैं कि हमने स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करके एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाले जीवन को अपना लिया है, हेल्थ को इग्नोर करके जीवन सिक मेंटली सिक जीवन जी रहे हैं, और बच्चों का न ध्यान करने के कारण फैमिली में बहुत बड़े डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत बड़ा तनाव है घरों के अंदर, और बच्चे दे नीड रियली केयर बाय पेरेंट्स एंड वी आर नॉट गिविंग देम क्वालिटी टाइम। तो ये कैसे, जब ये हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तब हमारा जीवन संतुलित होगा, देन इट विल बी बैलेंस्ड जीवन। अभी हमारा जीवन बिल्कुल इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस जीवन के कारण, और सबसे पहले आध्यात्मिकता का अभाव है, इसलिए हम डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, मेंटली सिर्फ एक चीज के ऊपर हमने फोकस कर दिया है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहता है कि दुख कोई नहीं मांगता है, बीमारी कोई नहीं मांगता है, भगवान के मंदिर में कोई आज तक प्रार्थना करने नहीं गया कि कैंसर टीबी हमारे को हो जाए, भगवान ऐसी कृपा करना, कभी सुना है किसी को? नहीं हो ना, फिर भी लोगों को बीमारी हो रही है ना। प्रहलाद महाराज कहता है बीमारी के लिए कोई नहीं जाता है भगवान के पास, फिर भी बीमारी सबके पास आती है ना, ऐसे सुख के लिए भी तुम समझते हो कि तुम्हारे कहने से मिलता है, लेकिन वो भी अपने आप तुम्हारे कर्मों का है, तुमको मिल ही जाएगा। तो जो आपको मिलना है आपके शेयर का मिलेगा, आपका परिश्रम आपको करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन इन 3 चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बॉटम लाइन ये है, गॉडलेसनेस इज द काज ऑफ क्योस इन दिस सोसाइटी। इस वक्त जो बहुत बड़ा संसार के अंदर एक तनाव चल रहा है, पैसा बहुत ज्यादा आ गया हमारे पास, पहले से हमारे बड़ों बुजुर्गों के पास इतना पैसा नहीं था, उनका दिल बहुत बड़ा था, हमारे पास पैसा ज्यादा है, हमारा दिल छोटा हो गया, और तो उसको खोल के बड़ा करना पड़ रहा है अभी। उसकी नलियां ही बंद हो गई है ना, उनके दिल बड़े थे, उनके पास 10 मेहमान आते थे तो बड़े खुश होते थे, हमारे पास भाई भी आता है तो पूछते तुम्हारा रिटर्न टिकट कब है भैया। हमारे मन के भाव ऐसे संकीर्ण हो गए हैं कि हम वी आर नॉट रियली, उस जमाने में तो उदारता बहुत थी, लेकिन अब सब कुछ उधार पे ले रहे हैं, वो उदारता दूसरी थी, और ये उधार जो आजकल की है, ये आजकल सब उधार के ऊपर चल रहे, ऐसा ही अमेरिका ने दिमाग खराब किया, हायर परचेज के ऊपर ले लो, कमाई से ज्यादा खर्चा करो, फिर परेशान जीवन में स्ट्रेस में रहो। ये मिडिल तबका तो इसके लिए परेशान है, सब उधार के ऊपर सब जी रहे हैं, पैसे किसी को देने हैं मालूम नहीं। अभी तो कहते हैं दुबई में आपके पास वो स्टेट ने ऐसा कुछ ड्रामा कर लिया कि लिक्विडिटी तो है नहीं, कई सारे लोग परेशान पड़े हैं, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन का यही नतीजा निकलेगा। रात रात में जो रात रात में जो करोड़पति बनने चाहते हैं वो दो घंटे के बाद अस्पताल में भी बाईपास के लिए दाखिल होते हैं, तो ये दोनों साइड टू साइड जाते हैं कोई। इसलिए बैलेंस जीवन बिताओ, 40 साल जिंदगी में जीने को मिलते हैं, 40 साल केवल जीने को मिलते हैं, 20 साल तो सोने में चले जाते हैं सबके, 5 साल बचपन में चले गए मालूम भी नहीं पड़ा, और बुढ़ापे के 5-7 साल कोई हमको पूछेगा भी नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, आंखों से देखेंगे नहीं, तब तो हमारी कोई बात सुनने वाला है नहीं। और आजकल तो 4-1 साल तो जीवन में लाइन में खड़े होना पड़ता है लोगों को, दुनिया का ये रिसर्च है कि टिकट लेना और बिल देना, और इसमें 4-4 साल जिंदगी के लाइनों में चले जाते हैं, इन क्यूज 4 ईयर्स आर लास्ट। 40 साल मैक्सिमम आपको जीने को जिंदगी 30-40 साल मिलती है, इसके लिए इतना सारा झमेला करके परेशान होकर दूसरे को सुखी नहीं देख क्यों ना पा रहे हो, जरा पीसफुल रहो, थोड़ा सा शांत रहो कि थोड़ा ही जाना है, इतना ज्यादा कोई ऐसे नहीं कि सारी उम्र हमको कोई 5-8-10-1000 साल रहना है इसलिए इतना कुछ झमेला कर रहे हैं। टेक इट इजी, थोड़ा सा जिंदगी में परिवर्तन लाओ, थोड़ी स्थिरता लाओ, थोड़ी सिंप्लिसिटी लाओ, तो फिर दूसरे का सुखी होना आपको परेशान नहीं करेगा, आपको उसमें आनंद आने लगेगा। तो आदमी जा रहा था मंदिर में प्रार्थना करने के लिए कि बहुत गर्मी है, जूता नहीं है घर में, भगवान कृपा करो 2000 रुपया कमा लूं के जूता खरीद लूंगा, इसलिए प्रार्थना करने जा रहा था। मंदिर के अंदर गया नहीं, अभी बाहर बैठा हुआ एक आदमी, दोनों पांव कटे हुए थे, भीख मांग रहा था, उधर ही खड़े होकर कहा जूता मांग के क्या करूं, मेरे को पांव तो कम से कम है, बगैर पांव वाले भी तो दुनिया में है ना, अब भगवान को मैं काय के लिए जूतों के लिए कहूंगा। तो एक थोड़ा सा अपने से नीचे देख लोगे ना तो जिंदगी में सुखी रहोगे, हम अपने से ऊपर देखते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे देख लो, हमारे से नीचे बहुत जो लोग रह रहे हैं, बगैर पांव वाले रह रहे हैं तो बगैर जूते वाले को क्या परेशानी, जिंदगी में थोड़ा सा नीचे देखो तो हमसे नीचे लाखों करोड़ों लोग हैं वो भी जी रहे हैं। भगवान का शुक्र मानना चाहिए, भगवान का धन्यवाद कि कैसे भी आपने हमको बहुत दिया है, या सुबह धन्यवाद मानो, शाम धन्यवाद मानो भगवान का, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू गॉड, लर्न टू लिव विद दिस प्रेयर, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भी किरोड़न जी का याद नहीं, ये शरीर करोड़ रुपये का है, मेलन में वास नहीं, एक भी थोड़ होते हैं जो न लाए सकी, ये बॉडी कितनी कितनी कीमती है कभी इसका अंदाजा लगा है, एक बाल भी अगर उखड़ जाए उसको लगाने के लिए 1,00,000 रुपया तो नहीं लग सकता है, एक बाल भी वापस उखड़ा हुआ नहीं लग सकता है, कितना परफेक्ट अरेंजमेंट उसने बना के रखा है, कितना सुंदर उसने डिजाइन बनाया है, तो आंखें यहाँ रख दी इसके नीचे, नाक इसके नीचे, मुंह रख दिया है, खाने से पहले भोजन को देख लो कि इसके अंदर मक्खी तो नहीं पड़ी, यहाँ आने उससे पहले सूंघ लो कि कल परसों का तो नहीं है तब खाओ, ये आंखें कहीं रखी होती यहाँ पीठ में और नाक उधर कंधे के ऊपर, तो ये भोजन को ये थाली को दिखानी पड़ता फिर यहाँ दिखाना पड़ता, कितनी परेशानी होती, कैसा सुंदर मुख के अंदर इतना डिजाइन फर्स्ट क्लास बनाया, उसका धन्यवाद करो कि कितना कृपा उसने की, ये बाल तो नहीं बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं कटाने पड़ते हैं, ये बढ़ते होते तो यहाँ हमको सारा दिन ऐसे चलने में परेशानी, कैसी उसने अरेंजमेंट कितना परफेक्ट हर चीज का बना के रखा है, दांत दिए नहीं तो माँ के स्तन में दूध दे दिया, और दांत आ गए तो हलवा खाने को दे दिया, और दांत चले गए तो खीर खाने को दे दी, सब परफेक्ट अरेंजमेंट उसने बना के रखा। लिव अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ, भगवान की इच्छा के अनुसार जियो तो दुनिया में सुखी रहोगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जियोगे तो सुखी संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा, भगवान के आनंद के लिए जियो, उनकी इच्छा के अनुसार जियो तो संसार में सुखी हो सकते, यही आध्यात्मिकता का सार है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए, जरूर पूछिए।
एक घंटा यहाँ बैठते हैं, ये बातें सुनते हैं, अच्छी लगती है, यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो सब जाने में
आप तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है, आप बहुत अच्छा परफ्यूम लेके आए फ्रांस का, उसके 2 मिलीलीटर ऐसे लगाएं अच्छी तरह से, और फिर अचानक आपको किसी गटर के अंदर उतरना पड़े कि इसके अंदर सफाई करनी है, बाहर आओगे तो किसकी खुशबू ज्यादा आएगी, परफ्यूम की कि गटर की? तो हफ्ते में 1 घंटा सत्संग सुनने आते हैं, बाकी हफ्ते के कितने घंटे हैं जो हम कहाँ रहते हैं, तो किसका असर ज्यादा रहेगा? नेचुरली जिसका हम जिसके संग में ज्यादा रहते हैं उसका असर रहेगा ना। फिर भी एक महात्मा से किसी ने पूछा था कि कथा सुनते हैं तब मन करता है कि भगवान का भजन करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो सब बातें भूल जाते हैं। तो महाराज ने कहा ऐसे एक टोकरा पड़ा था, बोला इसको पानी भर के आओ, नदी से जाके पानी भर के आओ। तो टोकरे में पानी कैसे भरेगा, टोकरे में तो सोराख होते हैं। तो क्या बेचारा 1 बार भरा 2 बार भरा 3 बार भरा 10 बार भरा नहीं, वापस आया, बोला महाराज इसमें भरता नहीं है। बोला क्यों? बोला इसमें बड़े बड़े सोराख हैं। बोला यही तो मैं तुमको कह रहा हूं, मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो तेरे अंदर भी इतने सारे दर खिड़कियां खुली हुई है, सब बह जाता है। तो दुखी हुआ तो महाराज ने बड़ा खुश होकर कहा, तुम जब टोकरा ले गया था उस वक्त कैसा था और अब कैसा है? बोला महाराज ले गया था मैं तब इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, 10-20 बार मैंने पानी में डाला है, ये धुल गया है, थोड़ा नरम हो गया है। बोला बेटा कोई बात नहीं, भरा नहीं तो कोई बात नहीं, धुल के तो आया ना, तो कम से कम ये धुलाई थोड़ी थोड़ी हो रही है। लेकिन ये बार बार करते रहोगे, पानी में उस टोकरे को सारा दिन डालोगे ना, तो इतना मोटा और नरम हो जाएगा, आस्ते आस्ते वो सोराख छोटे होने लगेंगे, और छोटे होते होते सोराख एक दिन वो भर भी जाएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, हम उसको कंटिन्यू कर, हम उसके उसको रेगुलर नहीं रख पाते हैं, उसको हम लगातार चला नहीं रहे हैं। थोड़ा एक दिन के लिए करते हैं फिर भूल जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर एक दिन आते हैं फिर कुछ दिनों के लिए भूल जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन रोटी रोज खाने का अगर नेम है तो रोज भगवान का भजन करने का भी नेम बनाना चाहिए, तो फिर ये समस्या नहीं होगी। और दूसरा ये है कि हमारी फाउंडेशन बहुत कच्ची है, वो बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं अच्छी होगी तो बिल्डिंग चलेगी नहीं ज्यादा। और हमारी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन, वो शास्त्र हैं, और शास्त्रों को हमने कभी पढ़ा नहीं है। गांधी रोता था कभी कि मुसलमान के बच्चे को बचपन में कुरान पढ़ाई जाती है, ईसाई बचपन में बाइबल पढ़ता है, दुर्भाग्य से हमारे बच्चे भगवत गीता बचपन में नहीं पढ़ पाते हैं, ये हमारे माता पिता बच्चों से बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये अगर पढ़ लिया होता तो उनकी अच्छी इम्यूनाइजेशन हो जाती, उनको ये जो बुराइयां हैं उसके अंदर लगती नहीं, जैसे टीका लगाए हुए बच्चे को बीमारी नहीं होती है, पोलियो के ड्रॉप पिलाओगे तो पोलियो की बीमारी नहीं होगी, ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को दे दोगे बचपन में तो उसके अंदर बुरे विकार नहीं आएंगे, इसको संस्कार बोलते हैं। अब संस्कार है ही नहीं, इसलिए केवल विकार ही विकार है। तो बात मैं ये कर रहा था कि हमारी फाउंडेशन कच्ची है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे सिंधी सेरेमनी हॉल में हमारे भक्तों को कि आप सब लोग के पास मोबाइल है, सबके पास ये इलेक्ट्रॉनिक है, जब ये खरीद तो इसके साथ किताब आता है, उसको कोई नहीं पढ़ता है, ये सच्चे है कि नहीं है? क्यों नहीं पढ़ता है? कब पढ़ता है? खराब होता है तब पढ़ता है कि अब देखो क्या खराबी। ये हमारी मानसिकता, हमारी कॉन्शियसनेस बताता है कि हम नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। हम चीज तो ले ली, ये इसको ठीक चलाना कैसे, वो किताब कंपनी ने इतना बनाया, मेहनत की, खर्चा किया, हम उसको पढ़ने को तैयार नहीं है, और खराब होता है तब उसको ढूंढते हैं कहां है, कहां ले आओ तो जरा देखें इसको क्या हो गया। ऐसे ये भगवद गीता हमारा, भगवान ने हमारे को साथ में ये किताब दे दिया, जब हमको बनाया तो ये कैटलॉग साथ में दिया, हमने इसको देखा नहीं। जब कोई मरता है तब बोलता है कि कहीं गीता है तो एक अध्याय पढ़ के इसको सुनाओ, तो जब मशीन खराब होती है तब गीता पढ़ते। तो ये हमारी साइकोलॉजिकली मानसिकता से, ये हमारी मानसिकता का दर्शन करा रहा है कि हमने कितना इग्नोरेंट, हम उस चीज के लिए भी हम इस तरीके से, हमने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं, हमारा बेस बहुत, हमने सुनी सुनाई कथाओं के ऊपर अपना आध्यात्मिक जीवन चला दिया। हमारी स्थिरता जो आनी चाहिए वो बेस स्ट्रांग होना, बुक्स आर दी बेसिस, शास्त्र जो है ये बुनियाद है, ये हमारे जीवन में अगर उतरेगा तो फिर हम बहुत भीषम की तरह, फिर हमारे को मरने से का भी भय नहीं होगा। और तब भीषम को आज 5,000 साल हो गया, आज बैठ के हम यहाँ दुबई में बैठ के उसकी कथा कर रहे हैं क्योंकि उसका चरित्र इतना महान था, तो ऐसे ऐसे जीवन जो जीते हैं, जिसका चरित्र वाला जीवन होता है, मैन ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल लिव्स फॉर एवर, पर्सन में नॉन लिव प्रिंसिपल लिव्स। गीता भी 5000 साल से पहले भगवान ने कही थी, आज भी उसका उतना ही महत्व है अगर कोई समझने का प्रयास करे तो। तो हमारे को अपने जीवन को के लिए आधार कोई होना चाहिए, शास्त्र का आधार होना चाहिए। पानी में नाव को जब डालेंगे तो दो चीजें होंगी तो मंजिल पे पहुंचेगी, एक तो फेवरेबल विंड अगर होगी, हवा अगर आपको ठीक मिलेगी तो आप, और दूसरा चलाने वाला नाखुआ कैप्टन अच्छा होगा तब चलेगी नाव जाएगी। ये शरीर रूपी नाव हमारी भव सागर में है, शास्त्र उसके लिए फेवरेबल विंड है और गुरु उसके लिए कर्णधार है या कैप्टन है। ये दो जब तक जीवन में नहीं होंगे तब तक संसार सागर पार नहीं होगा। इसको पार करने के लिए दोनों चीजों की अति आवश्यकता है, हमारे पास प्रायः ये दोनों चीजें नहीं है, और दोनों हैं तो भी नकली हैं। जैसे आजकल मार्केट में सब नकली माल मिलता है, असली माल है ही नहीं, नकली माल ले आता है, रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। हम सब बहुत सस्ता माल जल्दी ले लेते हैं, फिर चलता उतना ही है। पुराना क्या महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो हमारा तो ये सस्ता रोए बार बार वाली कथा चल रही है। महंगा एक बार ले ले और फिर पक्का चलाए तो फिर कोई बात नहीं। आर यू सेटिस्फाइड? थैंक यू हरे कृष्ण। एनी बडी किसी और का कोई इच्छा है, कुछ प्रश्न है, मालवी का कुछ पूछना है क्या? नहीं, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। फिर भी आप गद्दी पे आते हैं, रविवार को सत्संग करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हितेश जी और सब कोई बनाइए।
स्वामी जी थैंक यू वेरी वेरी मच,
कृष्ण ब्लेस यू ऑल।
हमारी तरफ से हेमंत।